अनुच्छेद 9। हांस गास्टॉर्प ने खुद को गिरगित और पीटर उस लड़के की कहानी सुनाई जिसके पास सुनहरे क्राउन पिन वाला था, जो किसी दूसरे ग्रह से बात करता था, और एलिस नाम की एक रानी से। उसने खुद को पहाड़, दीवार, पहाड़ी झील, लेटने वाली कुर्सियां सुनाई, और जब वह यह सब सुनाता रहा तो कुछ अजीब हुआ। कहानी फॉर्ट्रैक के साथ मिलकर घुलने लगी। पहाड़ी झील बड़ी हो गई, उथली हो गई, एक लैगून बन गई। लेटने वाली कुर्सियां गोंडोलों में बदल गई। संगीत कक्ष में रखा फ्लूगल काला चमकदार हो गया, लंबा हो गया, और ये इतना अप्रसन्न करने वाला तर्कसंगत था कि हंसना आ जाए अगर कोई सो न रहा हो। खुद गोंडोला बन गया। संगीत कक्ष के लास्ट स्तंभ अचानक अब पार्केट पर नहीं बल्कि पानी में खड़े थे, जैसे खूंटे, जैसे निशान, जैसे वे स्तंभ जिनके बारे में राइजे प्रॉस्पेक्टन में कहा जाता है वे इकोनिश है। कमरा अब कमरा नहीं रहा बल्कि शहर बन गया, और शहर में अब लकड़ी और कालीन की नहीं बल्कि पुराने पानी की गंध थी। हांस गास्टॉर्प को सपने में पता नहीं था कि ये वेनेडिग था, लेकिन वह इसे महसूस कर रहा था, क्योंकि वेनेडिग आदरणीय पाठिका, आदरणीय पाठक, जगह कम और एक अवस्था ज्यादा है। पानी, सुंदरता, क्षय और एक हल्का मीठा सा एहसास कि आदमी बहुत देर तक ठहर जाता है। गोंडोलों में से एक पर एक आदमी बैठा था। वह सजा संवरा था, लेकिन यह सजना संवराना कुछ थकाऊ सा था, जैसे उसने इसे खुद से छीन कर पाया हो। उसका चेहरा पीला था और आंखों के चारों ओर कुछ पाउडर जैसा था, ज्यादा नहीं पर इतना कि यह बता दे कि वह क्षय से सिर्फ डरता ही नहीं बल्कि उससे लड़ता भी है, ऐसे साधनों से जो खुद ही पहले से क्षयग्रस्त है। उसके हाथ में एक नोटबुक थी, गुस्टाव वन ए। उसने ऊपर देखा और उसकी नजर उस इंसान की नजर थी जो सुंदरता देखने का आदी है और इस दौरान मरता रहता है। एम्फेलोंगन, उसने कहा बिना कि हांस गास्टॉर्प को पता हो वह ये क्यों सुन रहा है। सिंड डी सन्फ डेस्टे फॉर्म डिस्पे फेल्स। वाक्य पानी में गिरा और कोई लहर नहीं बनाई। सपनों में वाक्य ऐसे ही होते हैं। गुस्टाव वॉन ए के बगल में, और ये दूसरी हल्की सी कॉमिक थी, प्रोफेसर जीजर खड़ा था, लेकिन जीजर के रूप में नहीं बल्कि एक तरह के ऑप्टिमीरों के गोंडोलियरे के रूप में। उसके पास चप्पू नहीं था बल्कि एक हैंटल स्टैंगे थी जिसे वह चप्पू की तरह पकड़े हुए था। वह कुछ नया नहीं कह रहा था, वह बस अपने वाक्य कह रहा था जैसे वे चप्पू के स्ट्रोक हो। मेजर व्हाट मैटर्स, कीप इट सिंपल, राइट हियर, राइट नाउ। और गोंडोला चल रही थी, पानी से नहीं बल्कि दोहराव से खड़ा था। टोनियो, यह गहरा संवेदनशील इंसान जो हमेशा किनारे पर खड़ा रहता है क्योंकि वह मध्य को प्यार करता है और फिर भी उसमें फिट नहीं बैठता। उसने कोट नहीं पहना था बल्कि कुछ ऐसा जो ज्यादा सूट जैसा दिखता था। वह सजा समरा था और फिर भी उसकी मुद्रा में कुछ बेघर सा था। वह गोंडोलों को देख रहा था, ऑप्टिमियरों करने वाले लोगों को, चमकती पानी की सतहों को, और उसकी नजर में वही लालसा और उपहास का मिश्रण था जो कलाकार में होता है जब वह बर्गर लिशकायत को देखता है। मैं तुमसे ईर्ष्या करता हूं और मैं तुम्हें तुच्छ समझता हूं और मैं तुम्हें चूमना चाहता हूं। तुम लोग स्वस्थ हो, टोनियो ने कहा, और स्वस्थ शब्द एक आरोप जैसा लगा। तुम लोग प्रोग्राम में हो। हांस गास्टॉर्प उसे जवाब देना चाहता था लेकिन वह नहीं दे सका, क्योंकि सपनों में आदमी अक्सर सिर्फ नजर होता है, आवाज नहीं। टोनियो पास आया, हांस को देखा, और हांस ने महसूस किया कि टोनियो उसी की बात कर रहा था, हालांकि वे कभी मिले नहीं थे। उस एम्फिंडोम्स मेंशन की जिसे प्रोग्रामन में खींच लिया जाता है। तुम मानते हो, टोनियो ने कहा, तुम्हें सृजनशील होना होगा ताकि तुम मान्य हो सको। शफन, हांस गास्टॉर्प ने जीजर के लॉग बुक के बारे में सोचा, वाक्यों के बारे में, संख्याओं के बारे में, अंगूठी के बारे में, लिखने के बारे में, बतौर बने रहने के। वेर श्राइप्ड देर ब्लाइप्ड, टोनियो ने कहा, और यहां ऐसा था जैसे जीजर का उद्धरण टोनियो के मुंह में भटकर आ गया हो, जैसे वह हमेशा से वही रहा हो। लैगून के ऊपर आसमान में बहुत नीचे गेटैंकन ऑटोबान के वाहन दौड़ रहे थे, ये चमकती हुई अक्षर कार्य जिन्हें डॉक्टर ओडीएचएस ने अपनी कहानी में रखा था, वे दौड़ रही थी बेचैन लाइनों में। और हांस गास्टॉर्प ने देखा कि हर गाड़ी पर एक संख्या थी, 10,000, 2,500, 600, 1,000, कैलोरी, कदम, घाटा, अधिशेष, विचार बही खाता बन गए थे। और फिर जैसे हांस कैस्टॉप के जीवन में, जो कार्निवलिस के कभी पूरी तरह गायब नहीं होता, उसे भी सपने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी हो, एक आकृति प्रकट हुई जिसने गधे का मुखौटा पहना हुआ था। वह लैगुनन स्टैट के एक साइड गलियारे से बाहर आई, मुखौटे के कानों से पानी छटका और ऐसी आवाज में बोली जो एक साथ थकी हुई और दृढ़ निश्चयी लग रही थी, मैं अब और गाधा नहीं रहना चाहता। वह फिलिप मॉर्गन स्टैन था। उसने मुखौटे को छटका जैसे वह उसे उतार फेंकना चाहता हो, लेकिन वह मजबूती से चिपका हुआ था। इसलिए नहीं कि वह बंधा हुआ था, बल्कि इसलिए कि सपनों में मुखौटे कपड़े के नहीं बल्कि गशिकते के बने होते हैं। मैं अब और यह दावा नहीं करना चाहता, उसने कहा, कि घास नीली है। तब हांस कैस्टॉर्प ने, और यही असली चुभन थी, अपने हाथ की ओर देखा। अंगूठी चमक रही थी, तेज नहीं, गहने की तरह नहीं, बल्कि एक छोटी गोपनीय आंख की तरह। अंगूठी पर एक गोला था, एक फॉर्चुट्स क्राइस, और यह गोला नीला था, नीला। किनारे की घास हरी थी, पानी हरा सा था, आसमान धूसर सोने जैसा था, लेकिन गोला नीला था। मॉर्गन स्टर्न ने भी इसे देखा। वह हंसा, और यह हंसी कड़वी और मजेदार दोनों थी। देखते हो, उसने कहा, आदमी सच चाह सकता है और फिर एक डिस्प्ले आ जाता है, और इसी क्षण आदरणीय पाठिका, आदरणीय पाठक, ऐसा था जैसे सपना एक नैतिक मोड़ ले रहा हो, जैसा सपने कभी कभी करते हैं, क्योंकि मन नींद में भी एक छोटी सी प्रार्थना सभा करता है। पीटर, वह लड़का क्रोनन पिन के साथ घास से बाहर आया। वह उदास नहीं दिख रहा था, वह बस शांत दिख रहा था। गिरगिट उसकी कंधे पर बैठा था। वह अब न हरा था, न पीला, न भूरा। वह एक बिलशिर्म की तरह रंग बदल रहा था। वह, अगर यूं कहें, आधुनिकता का जानवर था, घुल जाने तक अनुकूलनशील। पीटर एक लेटने वाली कुर्सी पर बैठ गया, जो अचानक फिर से लेटने वाली कुर्सी बन गई थी, पहाड़ी झील के किनारे, जो अचानक फिर से पहाड़ी झील बन गई थी, और लैगून पीछे हट गई जैसे वह सिर्फ एक परत रही हो। यहां बहुत शोर है, टीचर ने कहा, और उसने नीचे की ओर इशारा किया। वहां गिडांकन ऑटोबान चल रही थी, बहुत दूर, लेकिन दिखाई दे रही थी। हम ऊपर चलते हैं, गिरगिट ने कहा, और उसकी आवाज डॉक्टर आउ डीएचएस की आवाज थी, बिना कि हांस कैस्टॉर्प को इस पर आश्चर्य हो। सपनों में आदमी हैरान नहीं होता, वह पहचानता है। वे चले, हांस कैस्टॉर्प साथ चला, और चलते हुए उसने काफी अजीब तरह से अपने कदम महसूस किए, जैसे कदम सिर्फ गतिविधि न हो बल्कि रास्ता हो, सिर्फ संख्या नहीं बल्कि गति। ऊपर झील के पास वे बैठ गए। पीटर सो गया, गिरगिट ज्यादा रहा, और हांस कैस्टॉर्प, यह एम्फिंडिंग्स मेंच, ने अचानक कुछ महसूस किया जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था, शांति। गिडांकन ऑटोबान बहुत नीचे चल रही थी, वह चल रही थी और वह अप्रासंगिक थी।